रजनीश कुमार यादव के आवाज़ में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के लहर नामक ग्रंथ के कविताओं में उनकी व्याख्या एवं विशेषताओं को सुनिए। पहले लहर की भूमिका। लहर में थके पथे की पंथा की पाथे बनी स्मृतियों के अनेक रूपों के अलावा क्षितिज को उदार बनाने की आंतरिक कोशिश है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस के आत्मकथांक में आत्मकथा शीर्षक से छपी कविता के अंत में प्रसाद ने अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा लिखकर अपनी रचनाओं के भीतर के मर्म का ही उद्घाटन किया है। वह मर्म व्यर्थ व्यथा झरना आंसू में अनेक रूपों में उद्घाटित होती हुई धीरे धीरे विश्व कथा में बदलने लगती है। निजी पीड़ा लोक पीड़ा का रूप धारण कर लेती है और फिर लोक पीड़ा की मुक्ति का उपाय भी कवि खोजने लगता है। लहर के विषय में पंत जी ने लिखा है कि लहर के प्रगीतों में गांधीर्य मार्मिक अनुभूति तथा बुद्ध की करुणा का भी प्रभाव है। प्रसाद जी का भाव जगत झरना की प्रेम व्याकुलता तथा चंचल भावुकता से बाहर निकलकर इसमें उनकी व्यापक जीवानुभूति को अधिक सबल संगठित अभिव्यक्ति दे सका है। आत्मपरकता की यह वस्तुपरकता प्रसाद को अच्छे लेखक से बड़ा लेखक बनाती है। आंसू में भी इस प्रकार की चेतना मिलती है। आंसू के अंत में तो आत्मपरकता के इस विस्तार का कारण और उसकी प्रक्रिया भी संकेतिक है। घिर उन निराश नयनों की जिनके आंसू सूखे हैं उस प्रलय दशा को देखा जो चीर वंचित भूखे हैं। सूखी सरिता की सैया वसुधा की करुण कहानी कूलों में लीन न देखी क्या तुमने मेरी रानी। सबा निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिम कंसा आंसू इस विश्व सदन में। लहर की पहली ही कविता में जो रचना के नामकरण और प्रतीकार्थ का कारण भी है सूखे तट पर करुणा की नव अंगड़ाएं सी और मलया नील की परछाएं सी छिटकने और छहरने की आकांक्षा है। स्मृति और आकांक्षा की यह भाव विचारात्मक द्वंद्वात्मकता लहर के गीतों और लंबी कथाओं कविताओं को गहरी अर्थवत्ता और कलाकृतित्व प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने लहर से आनंद की लहर का संकेत ग्रहण किया है। मुझे मूलतः यह स्मृति और आकांक्षा दोनों की लहर लगती है। जीवन के शून्यपन का संकेत प्रायः लहर में भी है परंतु इस शून्यपन को वे करुणा वेदना आदि से उदात्त करते रहते हैं। मादकता भरी ललाई आलस की अंगड़ाई बरसते जो मदिरा अश्रांत मधुचर्या विश्व मधु ऋतु के कुसुम विकास आह रे वह अधिर यौवन आह रे वह अतीत जीवन आदि विस्मृति के स्तूप के भीतर लहर में भी अनेक रूप लगभग प्रसाद के काव्य समय की तरह आते हैं। वे सौंदर्य अभिरुचि में एक विशेष भंगिमा और प्रकृति का संकेत करते हैं। लहर के गीतों में कसावट संक्षिप्तता और संकेतात्मकता के साथ विशेष प्रकार की विशेषण प्रियता भी है। अनेक कविताओं में यह विशेषण प्रियता अनुभव को एक प्रकार की सटीकता और ससीमता भी प्रदान करती है जिसे क्लासिक प्रवृत्ति माना जाता है। इस प्रकार के विशेषणों में अलस म्लान करुणा नील मधु अति प्रचलित है और कविता में कभी कभी अनुभूति के संदर्भ का कार्य करते हैं एक प्रकार से विभावन करते हैं। आचार्य शुक्ल ने आंसू के तुलना में लहर पर विस्तार से विचार करते हुए निष्कर्षतः लिखा है कि लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न कर पाते हैं। मूल गंधकुटी बिहार के उपलक्ष्य में लिखी अरिवर्णा के शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार कविता को पढ़ने से छायावाद और विशेषतः प्रसाद के मुहावरे और चिंतन का पता चलता है जो उनकी कविताओं में अंतर्ध्वनित सत्य की तरह निजी प्रेम को चिर सत्य और चिर सुंदर बनाता रहता है। अतिवाद की निंदा और मध्य पथ को सदगति विश्व मानवता का जय घोष भाग कितना लेगा मस्तिष्क हृदय का कितना है अधिकार मुक्ति जल की व शीतल बाढ़ जगत की ज्वाला करती शांत जैसे शब्द प्रसाद के कालबोध को भी उजागर करते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे और हे सागर संगम अरुण नील। कविताओं में एक प्रकार की रहस्यमयता है जो अंतर्व्यथित सत्य के रूप में अनुभव को अनुभूति में रूपांतरित करती है या संवेदनात्मक ज्ञान को ज्ञानात्मक संवेदना में बदलती है। प्रसाद के संदर्भ में यह एक प्रकार नियति बोध में भी है। दो उद्धरण इस अर्थ में आवश्यक हैं क्योंकि इन कविताओं में छायावाद के प्रमुख तत्व और यही घुलनशीलता ही छायावाद की कलात्मक और रचनशीलता है। प्रकृति, मानवता, स्वानुभूति, इतिहास और ईश्वर सबके संकेत इस पाठ में हैं। इन अंशों में कामयाबी के रचनाकार की मनोभूमि और उस काल के संस्कृति बोध का संकेत मिलता है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्र पट चल माया में विविता विपसी पड़ी दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी री। हे सागर संगम अरुण नील पिंगल किरणों की मधुलेखा हिम शैल बालिका को तूने कब देखा। कलरव संगीत सुनाती किस अतीत युग की गाथा गाती आदि। लहर के गीतों में अभी भी अधर में वह अधरों की प्यास धमनियों में आलिंगनमयी वेदना को लिए नई व्यथाएं तुम्हारी आँखों का बचपन कोमल कुसुमों की मधुर रात वे कुछ दिन कितने सुंदर थे और पागल पुकार फिर प्यार प्यार जैसी कविताएं आंसू अरुण और नील की युति की याद दिलाती हैं। बाहर की समग्र प्रकृति जिसमें मानव जगत भी है उन्हें अपनी अनुभूतियों का विस्तार लगता है। सारी सृष्टि प्रेम लीला और प्रेम की पीड़ा से प्लवित लगती है। प्रेम पृथक और आंसू की तरह लहर में भी प्रेम के ही कारण शशि प्रभात ओस लहर सावन घन बिजली आदि में सक्रियता है। प्यार की भावात्मक और अभावात्मक स्थितियों को प्राकृतिक प्रपंच समझने का आग्रह वैदिक गीतों से लेकर आज तक मिलता है। छायावाद मनुष्य को केंद्र में मानकर चलता है। प्रेम के अभावात्मक पक्ष की दृष्टि की उदात्तता के कारण कवि अभावों के बीच विद्यमान भाव के स्वप्न को शाश्वत बनाना चाहता है और यह भी आत्मप्रसार की आकांक्षा अथवा आत्मरति का ही उदात्तीकरण या विस्तार है। निजी व्यथा से समान व्यथा की खोज से उत्पन्न दृष्टि मानवता के विकास की कथा है। इस प्रकार की कविताओं में भी अंतर्निहित भाव प्रेम नहीं करुणा है। अपलक जगती हो एक रात वक्ष स्थल में जो छिपे हुए सोते हो हृदय अभाव लिए अनेक स्वप्नों का हो न प्रात। लहर के अंत में ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो कविताएं संकलित हैं वे प्रसाद के जीवन दर्शन देश प्रेम सामायिक स्थिति अंतर्द्वंद्व तथा नियति बोध की कविताएं हैं। अशोक की चिंता वैसे तो प्रसाद की भी चिंता है जो दुखी व्यक्तियों के घावों पर मलहम लगाने दुख बांटने और दुख से मुक्ति के उपाय खोजती हैं। कलिंग के युद्ध के बाद लाशों का अंबार देखकर अशोक के मन में सर्वनाश के बाद अनेक प्रकार के प्रश्न और शंकाएं उत्पन्न होती हैं जो परिवर्तन के क्रम को सनातन मानती हैं। उसके मन में करुणा का भाव पैदा करती हैं। क्षण भंगुरता की यह सनातनता अशोक के मन में परिवर्तन के अनेक चित्र प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार के चित्र प्रेम पथिक आंसू और कामायनी में भी हैं। यह दृष्टि वैराग्य भी पैदा करती है और दुख को दूर करने का संकल्प भी। अशोक में संकल्पात्मक अनुभूति है। विकल्पों की नाशवानता संकल्प का कारण बनती है। वह सोचता है कि विजय और पराजय का कुढंग छोड़कर मानवता के सुख का प्रयत्न करना चाहिए। महादंभ का दानव अनंग का आशो पीकर विश्व में अनेक भीषण अत्याचार कर चुका है। उसे अपनी विजय भी नश्वर ही लगती है। उसे सारा राग रंग वैभव विलास क्षणिक लगता है। प्रेम आदि भी उसे एक लहर ही लगता है। हालांकि प्रसाद आंसू में क्षणिक सुख को दो घड़ियों के जीवन के कोमल वृंतों में उलझने के बाद मृत्यु हो जाए तो भी महत्वपूर्ण और सार्थक मानते हैं। परंतु अशोक की चिंता में एक प्रकार की प्रवणता है। काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में, मणिमुक्ता की झलकों में, सुख की प्यासी ललकों में, देखा क्षण भंगुर है तरंग, फिर निर्जन उत्सव साला, नीरव नुपुर शलत माला, सो जाती है मधुबाला, सूखा लुड़का है प्याला, बजती बीड़ा न यहाँ मृदंग। अशोक की यह चिंता कमाने की चिंता से भिन्न है। यह एक प्रकार के दर्शन सर्ग की भूमिका है। इससे प्रसाद की उस मनोभूमि का पता चलता है जिसमें इस प्रकार की निष्कर्षात्मक अनुभव वाली कविताएं राग के बाद के विराग का कारण बनती हैं। अशोक की चिंता उसे विषादग्रस्त नहीं कर सकती, बल्कि कविता के अंत में अशोक और प्रसाद और किसी भी व्यक्ति को जो अहंकार और काम के वशीभूत होकर अपनी आकांक्षा को ही सबकी आकांक्षा मानता है, यह ज्ञान प्रदान करती है। संस्कृत के विक्षत पगरे, यह चलती है डगमग रे, अनुलेश सदृश तू लग रे, मृदु दल बिखेर इसमग रे। जलियावाला बाग में सेनापति के देशद्रोह के कारण छल से हुई हार से विजयी पराजित सिख सेना के नेता शेर सिंह के समर्पण की इस ऐतिहासिक घटना पर आधारित यह कविता शेर सिंह की वीरता, मातृभूमि के प्रति सम्मान, प्रेम की भावना और पंचनद के शौर्य, स्वत्व रक्षा में प्रबुद्ध सजीव सिखों के प्राणपण से लड़ने की वीरगाथा आदि का उल्लेख जिस प्रकार के मुक्त छंद में प्रसाद ने किया है, वह प्रारंभिक आख्यान कविताओं से अधिक कलात्मक संयम के साथ हुआ है। शेर सिंह की भावना और मातृभूमि की वीरगाथा का स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में वीर मूर्ति श्याम सिंह के माध्यम से किया गया वर्णन विषाद कारक नहीं, उत्तेजना कारक समयोचित प्रयत्न है। शेर सिंह का आत्मसंघर्ष और उसका आत्मबल इस कविता की निर्मिति का गुण है। प्रसाद की भाषा में बौद्धिक भावुकता के कारण इसमें विशेष प्रकार की दिव्यता भी है और शेर सिंह का मनस्ताप भी पूरी कविता में स्वतंत्रता, मातृभूमि, जन्मभूमि आदि शब्द कविता को घटना से हटाकर रचना की वस्तु बना देते हैं। परंपरा का जीवित अंश पराधीन भारत में नए अर्थ से दीप्त हो उठता है। यवनों के हाथों से स्वतंत्रता को छीनकर खेलता था यौवन विलासी मत पंचनद, प्रणय विहीन एक वासना की छाया में फिर भी लड़े थे हम निज प्राणपण से। पेशोला की प्रतिध्वनि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कटिबद्ध राणा प्रताप के मेवाड़ की यह पुकार प्राकारांतर से भारत माता की भी पुकार है। कविता नवजागरण की प्रतीक कविता है जिसमें बार बार आह्वान है कि इस अंधड़ में जब अंधकार का यह समुद्र क्षुब्ध होकर उमड़ रहा है तब पतवार को कौन थामेगा। यह मेवाड़ की ही चुनौती नहीं है, देश की चुनौती है। यही अंधकार भीतर और बाहर राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में भी है। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार, गहन नियत सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुब्ध हो। कभी जगाना चाहता है, प्राण संचार करना चाहता है, सोए हुए या मरो हुओं के शरीर में वह वर्तमान मेवाड़ या देश की अतीत के मेवाड़, राणा के मेवाड़ की तुलना में माया के समान पड़ा हुआ मानता है। एक प्रकार से जागो फिर एक बार की तरह इसे शक्ति साधना की कविता कहा जा सकता है। कविता में प्रसाद का शब्द चयन जागरण और उद्बोधन के अनुकूल ओज गुण युक्त है। कविता अपनी बनावट और मूल्य दृष्टि दोनों के समन्वय के कारण अच्छी है। प्रसाद का अपने समय का कालबोध इस कविता में ब्रह्मांड की तरह फैलता हुआ कालबोध है। प्रलय की छाया, एक नारी के आंतरिक एकालाप, उचित अनुचित के द्वंद्व आकांक्षा और मूल्य के तनाव की कलात्मक संतुलन से रची हुई कविता है। मानव मन की इच्छा और विवशता का ऐसा चित्र दुर्लभ है। एक एक पंक्ति अपने पाठ की दृष्टि से अनेक प्रति और सम पाठों की ओर संकेत करती है। इतिहास और परंपरा के खंडहरों में झांकने को बाध्य करने के साथ मन अतृप्त वासनाओं और कर्तव्यों के तनाव कैसे कमलावती के हृदय को मथते हैं। इस मार्मिक प्रसंग को प्रसाद ने आधुनिक दृष्टि से नितांत मानवीय बनाकर प्रस्तुत किया है। कविता में मानव नियति का व्यंग्य और उसकी विडंबना को जिस प्रकार रेखांकित किया गया है वह कविता को पैथेटिक नहीं ट्रेजिक बताता है। जिस रूप या वासना के माध्यम से वह सहंसा को अवश करके कटार से मारना चाहती है, ऐश्वर्य वैभव शक्ति आदि को नकारना चाहती है, वही सब उसके समय के विनाश के कारण बनते हैं। कविता की संरचना में पदक्रम का जैसा प्रयोग मानस के उद्वेलनों और अंतर्द्वंद्वों के लिए किया गया है वह सदा हुआ और संकेतक है। प्रकृति मानव जीवन व्यक्तित्व प्रति और वयस्क संधि के सौंदर्य की रूप वर्गीता को प्रसाद एक साथ इस प्रकार साधते और बांधते हैं कि कविता के प्रारंभ में ही कथ्य भाषा और वाचक के प्रति बलात् आकर्षित होना पड़ता है। आज और उस दिन के माध्यम से ही एक विडंबना नियति का संकेत मिलता है। गुर्जर रेश पावड़े बिछाते रहे पलकों के तीरते थे, मेरी अंगड़ाइयों की लहरों में पीते मगरंत थे, मेरे इस अधखिले आनंद सरोज का कितना सुहाग था वैसा अनुराग था, खिली स्वर्ण मल्लिका की सुरभित वल्लरी सी गुर्जर के थाले में मरंद वर्षा करती मैं। एक दृश्य है जिसमें रूपरानी गुजरात की कमला महिला महत्व का भाल उन्नत करने वाली पद्मिनी से अधिक सुंदर अपने सौंदर्य के प्रति सजग गुर्जर नरेश के साथ अहंकार के मद में उद करती हुई फिर भागती हुई यवनों के दल द्वारा पकड़े जाने पर अपने विचित्र मनोवृत्ति का वर्णन करती है। इस वर्णन में आदर्श यथार्थ का आंतरिक संघर्ष जिस रूप में प्रस्तुत है वह शिल्प की दृष्टि से काल की सनातन अवधारणा पर आधारित है, ऋजुरेखीय काल की ऐतिहासिक अवधारणा पर नहीं। एक प्रकार से सभी दृश्य परिधि पर स्थित हैं जो कमला और कमला के माध्यम से मनुष्य की सबलता और दुर्बलता को अर्थ प्रदान करते हैं। मन में उठने वाली भावनाओं के घात प्रतिघात प्रलय की छाया को नितांत मानवीय और यथार्थपरक बनाते हैं। उसका यह कथन वैसे तो प्रसाद के अनुभव की भी अर्थवत्ता लिए है। उन्हें भी शायद कोई कमला मिली हो, ऐसा उन्हें समवयस मित्र आदि कहते हैं, लेकिन नियति बोध और विडंबना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कमला के बहाने कवि ने दिल्ली के चरित्र पर भी एक टिप्पणी की है और यह टिप्पणी नियति से व्यंग की उन्हीं संकेतों में उस पर लागू है। रूप यह देखे हो तुष्क पति मेरा भी, यह सौंदर्य देखे देखे यह मृत्यु भी, कितनी महान और कितनी अभूतपूर्व बंदनी मैं बैठी रही, देखती थी दिल्ली कैसी विभव विलासिनी, यह ऐश्वर्य की दुलारी प्यारी क्रूरता की यह छलना थी सजने लगी थी संध्या में। प्रलय की छाया में रूप के माध्यम से अलाउद्दीन जैसे सम्राट को पराजित करने का भी एक दृश्य है जिसमें मानिक द्वारा गुर्जरेश की आज्ञा बताने के बाद वह अपना जीवन समाप्त नहीं करती है बल्कि अपने भीतर रूप के माध्यम से भारतेश्वरी का पद प्राप्त करने की लालसा का बयान भी करती है। जीवन की धूसर संध्या में जब उसे नीच परिवारी मानिक जिसे उसने अपने को समर्पित करके दबी हुई लालसाओं की पूर्ति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में बचाया था, वही मलिक काफूर की हत्या करके खुसरो नाम से बादशाह बन बैठा तो उसे पश्चाताप होता है। उस बिंदु से जब वह अतीत को देखती है तो उसे अपनी कमजोरी विवशता लालसा और मानवता के आत्मसम्मान की विजय आदि सब बात याद आते हैं। उसे मानव जीवन प्राप्त करने के बड़े सौभाग्य और उसकी अलभ्यता की स्मृति भी कहती है। इस स्वीकृति की विडंबना भी यही है कि यह बोध आत्महत्या के कारण पैदा होता है। नियति के क्रूर व्यंग को ही तो विडंबना कहते हैं। कविता अपनी दृष्टि में गिरने या अपमानित महसूस करने से ही नहीं, इस टिप्पणी से समाप्त होती है। यद्यपि वह काव्य को कमजोर करती है, परंतु प्रसाद के जीवन मूल्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नारी, यह रूप तेरा जीवित अभिशाप है, जिसमें पवित्रता की छाया भी पड़ी नहीं। जितने उत्पीड़न थे चूर हो दबे हुए, अपना अस्तित्व है पुकारते नश्वर संसार में, जिस प्रतिहिंसा की ध्वनि है चाहते। यहीं पर लहर की भूमिका समाप्त होती है।